Welcome to STEM Talk, where ideas ignite impact. STEM Talk is the official audio podcast series by STEM Connect Private Limited, your gateway to innovation, excellence, and thought leadership in science, technology, engineering, and mathematics. Here, we bring powerful conversations, breakthrough insights, and bold voices that are shaping the future of STEM in Pakistan and beyond. Whether you're a curious learner, a seasoned professional, or an innovator at heart, this is your space to explore, engage, and be inspired.
Assalamu alaikum, Dr. Bilal, STEM Connect ke saath hazir hain. Jaisa aapko pata hai ki STEM Connect mein hum science, technology, engineering and mathematics ke mukhtalif issues ke upar جو اسٹیم فیلڈس ہیں ان کے مختلف ایشوز اور مختلف جو ایجوکیشن پرپسز کے حساب سے ڈفرینٹ کانسیپٹس اینڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے ہیں لوگوں کی آگہی اور لوگوں کی اویئرنیس کے سلسلے میں ہم مختلف پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے مختلف اور پلیٹفارمس اس پلیٹفارم کے انڈر میں مختلف سروسز بھی ہیں تو آج کے جو پروگرام ہے آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم ڈاکٹر سلیمان اوٹھو صاحب ہیں ایک چیسٹ اسپیشلسٹ بائی ٹریننگ ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کی گلوبل ہیلتھ پبلک ہیلتھ ریسرچ گرانٹس ریسرچ اور مختلف پیرامیٹرز میں ان کی کافی سروسز رہی ہیں اور ایک طرح سے وہ مینٹور بھی ہیں پبلک ہیلتھ اینڈ گلوبل ہیلتھ لیول پہ تو ہم آج بات کرتے ہیں ڈاکٹر سلیمان اوٹھو سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آبویسلی میں ان چیزوں کو کم ہی بتا رہا ہوں گا جتنی سروسز ان کی ہیں کہیں زیادہ ہیں اس سے تو السلام علیکم ڈاکٹر سلیمان کیسے ہیں سر ویلکم ٹو اسٹیم کنیکٹ
تھینک یو
سر آپ کا ایکسپیرئنس سب سے پہلے
اصل میں مجھے آلموسٹ 30 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے میں جو ہے وہ سرکار میں ایز اے کلینیشن ڈاکٹر جو ہے وہ انٹر ہوا تھا اور چیسٹ اسپیشلسٹ بائی ٹریننگ ہوں اور پھر میں نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا آسٹریلیا سے پھر ایک میرا ماسٹرز انگلینڈ سے ہوا ہے اور میں پی ایچ ڈی فیلو بھی ہوں
اچھا
اور انفیکٹ دو اور ماسٹرز میں نے کیے ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل سائنس میں ہے اور ایک اس کے علاوہ سوشیالوجی میں ہے تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے میں پڑھاتا رہا ہوں تقریباً جو ملک کے تمام بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں میں ابھی اسٹل وزٹنگ فیکلٹی ہوں
ماشاء اللہ تو سر آج کا جیسے ٹاپک ہے میں اسٹارٹ میں بتانا بھول گیا آج ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے جو آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کہ پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے جس پہ ہمارے سروسز ہیلتھ کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پرائیویٹ کی طرف سے وہ کیا ہے اور پھر ہم اس سے بات پہ پھر بات دیکھیں گے کہ کیا اس مختلف سوال دیکھتے ہیں
جی بالکل میرا جو مین جیسے کہتے ہیں کہ اسپیشلٹی ہے وہ ہیلتھ سسٹمز ہی ہے اور پاکستان کے اگر ہیلتھ سسٹم کی آپ بات کریں تو ہمارے پاس ظاہر ہے دو طرح کے سسٹم کام کر رہے ہیں ایک جس کو ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں اور ایک اس کے علاوہ آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر اور اس پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹرشری اینڈ مڈ لیول کے ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ اور جو جنرل پریکٹیشنرز ہمارے ہیں
تو سر آپ جو سوری پبلک سیکٹر کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ سیکٹر ہی ہوئی
ہاں بیسکلی سیکٹر کو گورنمنٹ سیکٹر ہی کہتے ہیں اس عام لفظوں میں ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں
تو یہ جو پبلک سیکٹر ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں لیولز کیا کیا ہیں کچھ پرائمری سیکنڈری ٹرشری
جی ہمارے پاس جو ہیلتھ سسٹم کام کرتا ہے وہ جو بالکل گراس روٹ لیول پہ ہے اس کو ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں بی ایچ یو کے نام سے بیسک ہیلتھ یونٹ پھر اس سے جو اگلا سیکنڈری لیول ہے وہ ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو اور آر ایچ سیز رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتی ہیں اسپیشلائزڈ اینڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹل جہاں عام طور سے بڑے ہسپتال جن کو ہم جانتے ہیں وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں پھر اس میں اسپیشلائزڈ ہیں مطلب اسکن ہاسپٹل ہو گیا کڈنیز کا اسپیشل ہاسپٹل ہو گیا لیور کا اسپیشل ہاسپٹل ہو گیا اس طرح سے کر کے اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بھی اسی سسٹم کا ہے
اور پھر ہاسپٹلس کی الگ کلاسیفیکیشن ہے بیسڈ آن بیڈس آئی تھنک
جی کہ اگر اس نمبر سے زیادہ کا ہے تو اس کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں اور 200 سے زیادہ کے اگر بیڈ ہوں تو وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل
اور ٹرشری کو بھی پھر ہم بیڈ لیول 300 سے زیدہ ہو پلس تو فلانا اے کیٹیگری بی کیٹیگری آئی تھنک ایسا
جی کیٹیگرائزیشن ہمارے یہاں پاکستان میں اسپیسیفکلی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو پھر ہم جب وہ میں نے کہا نا ڈی ایچ کیو اور ٹرشری کیئر میں ہم چلے جاتے ہیں تو وہ ایک خاص لیول ہے اس حد تک ہم اس کو ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو کہتے ہیں फिर उसके बाद हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में।
ओके, तो सर हम जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स की और पब्लिक सेक्टर सिस्टम जो होगा, गवर्नमेंट सिस्टम जो कि हमारा हेल्थ सिस्टम है, तो उसमें कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसकी आप निशानदेही करना चाहते हैं जो बेहतरी की तरफ लाने की ज़रूरत है इस वक्त?
देखें, टू बिगिन विथ, एक सबसे जो अहम बात है वो है, वो ये है कि इस वक्त हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो जो यानी कि एक्सेस या रीच या अवेलेबिलिटी जिसको हम कहें मौजूदगी, वो 35% से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर नहीं कर रहा।
35% को कवर नहीं कर रहा? ओहो,
सिर्फ 35% को कवर करता है।
सिर्फ 35% को कवर करता है
जी, और बाकी सारी अभी अनकवर्ड हैं पब्लिक सेक्टर से।
तो जब 35% हम कहते हैं सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या 35% को सर्विसेज मिल रही हैं सर?
जी, आबादी जो है वो कैटर जो की जा रही है, जिनके पास ये सहूलत मौजूद है, वो 35% से ज़्यादा नहीं।
अच्छा, ठीक है।
तो बाकी जो सारा है वो आपका प्राइवेट सेक्टर और जनरल प्रैक्टिशनर उसको कैटर कर रहा है।
तो ये 35% है, क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनके यहाँ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, या वो उनकी कवरेज नहीं है?
नहीं, बाकी की कवरेज नहीं है। 35% कवर हो रहा है पॉपुलेशन, बाकी कवर नहीं हो रहा।
ओके,
वो जाहिर है मजबूरी में वो ट्रेवल करके उन जगहों पे जाते तो हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि एक है ना कि मेरे घर से ये 2 मील से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए।
हाँ, मैं नहीं जा सकता इतनी दूर।
एग्जैक्टली, कोई बीमार है उसको ले जाना हमारे लिए आमतौर से मुश्किल होता है। तो इजी एक्सेसिबिलिटी, हर 5,000 और 10,000 के दरमियान जो आबादी है उस पर एक BHU बनाया जाता है, फिर उससे ज्यादा 20,000 से 30,000 के करीब एक THQ आप करते हैं, फिर जैसे ही वो बढ़ता चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लाखों में आबादी हो जाती है, तो उस लेवल पे एक DHQ वो या RHC उसमें इंक्लूड करते हैं हम मिड लेवल पे, उस तरह से वो। लेकिन ये सारी कवरेज पूरे पाकिस्तान में अगर आप लगाएं
तो 35%
के फिगर्स हैं, वो 35% से ज़्यादा नहीं।
अच्छा, WHO कहता है। तो सर ये जो हम सुनते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर आप BHU RHCs हर शहर के, हर गांव के, हर देहात में, डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, वो मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं?
देखें, हर जगह नहीं है।
अच्छा।
यही बात हम कर रहे हैं कि जो हर जगह ये कम से कम 100% के करीब,
अच्छा,
मतलब 80% या 90% तक होने चाहिए। ठीक है ना, जब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब ये है कि आपकी आबादी का हर शख्स, उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सब
हर एक को रसाई होनी चाहिए।
उन सबको रसाई होनी चाहिए। वो रसाई हमारे पास इस वक्त कम है।
ठीक है,
तो सबसे पहला जो मसला है वो हमारी उस रसाई को बढ़ाना है।
ठीक
है, वो रसाई बढ़ेगी और प्राइमरी लेवल पे अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या डिजीज या बीमारी होना शुरू होगी, तभी जाके हम ये कह सकते हैं कि आगे उसको हम खराब होने से रोक पाएंगे।
अच्छा, तो अब इसमें दो चीज़ें मैं समझ पाया हूँ। एक तो ये कि या तो वो हेल्थ फैसिलिटीज ही नहीं है, एक्चुअली ज़्यादा उसकी कवरेज नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते
जी।
दूसरा ये है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें स्टाफिंग अच्छी नहीं है।
फिर मसला अगला ये आ जाता है कि जो हमारा यानी कि एक तो सेंक्शनड नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है कि इस हस्पताल में फलां 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 सहूलतें या डॉक्टर्स होने चाहिए, तो वहाँ मसला हमारे पास आ जाता है। जब हम शहरों में देखते हैं तो शहरों में हमें आमतौर से मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम गाँव की तरफ जाते हैं तो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, कम से कम होता चला जाता है।
और इसकी क्या वजह हो सकती है?
देखिए, उसकी वजह बहुत सारी है। आपको जो वहाँ आप डॉक्टर्स रख रहे हैं उनको आप वो सारी सहूलियात जो किसी एक बड़े शहर में हो सकती हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो एज अ रिज़ल्ट ये होता है कि उनकी जो फैमिलीज होती हैं वो तो शहरों में रह रही होती हैं, वो लोग खुद वहाँ से या तो आउटबैक कर रहे होते हैं या खुद जाके वहाँ कुछ अरसा रहते हैं, लेकिन फिर वो हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि फिर वो वापस किसी तरह से बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में चले जाएं, क्योंकि उनको टेक्निकली भी वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर अगर वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ सहूलतें ज़्यादा हैं, रहने की जो सहूलत है, बच्चों की पढ़ाई का जो मसला है, ये सारे इशू उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वो शहरों की तरफ रहें, और ये फिनोमेना सारी दुनिया में है।
लेकिन एक जो डॉक्टर है वो अगर किसी बहुत दूर दराज के गांव में रह काम कर रहा है, चलें ठीक है, उसको वहाँ से तो लिमिटेड पेशेंट्स मिलेंगे, लेकिन वो शाम को ऑब्वियसली, हाँ ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, क्या है वो शाम को अगर क्लिनिक वहाँ चलाएगा तो वहाँ उसकी इतनी अर्निंग नहीं होगी प्राइवेट, बनिस्बत ये कि वो शहर में चलाएगा।
सर्टेनली, एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि वो दूर होती है तो ज़ाहिर वो अपनी फैमिली को शायद वहाँ नहीं रख पाता होगा।
सही है।
तो जैसे ही बच्चे बड़े हों तो उनको फिर स्कूलिंग चाहिए और ये सारे इशूज़ होते हैं। इस हवाले से जो एक ज़माने में हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था जो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ था, कि वो लोग जो डॉक्टर हजरात जिनकी मिसेस, जिनकी फैमिली भी डॉक्टर हो, तो कोशिश ये की गई थी कि उन दोनों की पोस्टिंग उसी जगह कर दी जाए।
अच्छा, ठीक है।
तो एज अ रिजल्ट फिर ये हुआ था कि रिटेनेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी बढ़ी थी। और अब जो है वो क्या कहते हैं, लेकिन उसमें फिर एक लॉ है जो वेडलॉक पॉलिसी कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि जहाँ हस्बैंड हो वहाँ खातून भी होनी चाहिए, और अगर खातून है तो हस्बैंड भी होने चाहिए। तो आमतौर से इसको भी, इस वजह से भी डिसबैलेंस हो जाता है। और उसमें एक बड़ी अहम बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे जो लॉ में ये डिसीशन मेकिंग हुई थी कि मेरिट पे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला होगा, और उसने हमारा सारा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का।
अच्छा,
क्योंकि हमारे यहाँ 80-90% जो कम अज़ कम गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है और मर्दों की या लड़कों की तादाद कम, डॉक्टर्स की, मेल डॉक्टर्स की कमी हो गई है।
हम यही देखते हैं अब लड़कियों का ज़्यादा एडमिशन हो रहा है।
एग्जैक्टली। और वो ये भी इस वजह से अब गवर्नमेंट को उन्होंने एक्सक्लूसिव मेल कॉलेजेस भी बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जुडिशरी, हायर जुडिशरी ने डिसीशन मेकिंग की थी, उनको रिव्यू के लिए कहा गया, उन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा इसको ये प्योर मेरिट पे ही रहने दें। तो समटाइम जो है ये इस तरह के डिसीशन आपको डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी करने चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट में ही एक फैसला किया जाए। उनको ये समझा, मतलब बताने की कोशिश की गई थी कि इसको 50% कर दिया जाए, कि जो आबादी 50% मर्द हैं तो 50% एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में मर्द डॉक्टर बने और 50% ख्वातीन बने।
तो अगर एडमिट इतनी एप्लीकेशन ही नहीं आए इस साल मिसाल के तौर पर लड़कों की, तो फिर मुश्किल होगा।
हाँ, अभी भी हो रहा है,
ऐसे ही हो रहा है।
हाँ, आप जो है प्राइवेट सेक्टर में खसूसी तौर पर और इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो मर्द डॉक्टर हैं उनकी तादाद कंपैरेटिवली कम होती चली जा रही है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो शायद नापैद होने लगे।
बिल्कुल,
क्योंकि बहुत सारे फिर वो बाहर भी चले जाते हैं, आपका ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। ये सारे भी इशू हैं और ये बहुत अहम बातें हैं, किसी भी सिस्टम को सस्टेन करने के लिए आपको इनका ख्याल करना पड़ेगा।
हाँ, ये हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इसी में।
एग्जैक्टली, ह्यूमन रिसोर्स आपका नंबर वन है। आप, हालांकि हमारे यहाँ तादाद जो है वो मेडिकल कॉलेजेस की 150 से ज्यादा है,
150
जो कि पूरे अमेरिका में शायद नहीं है।
अच्छा,
लेकिन उसके बावजूद कैसी अजीब बात है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि एक और जो उसका सोशल फैक्टर है कि 20-30% हमारी जो ख्वातीन डॉक्टर बनती हैं वो
घरों पर रोटियाँ
बना रही होती हैं मैरिज सिस्टम में जाने के बाद। वो उनको टाइम नहीं मिलता, सहूलत नहीं होती, अर्ली वो अपनी फैमिलीज बनाने में लग जाती हैं, तो वो फिर बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ देती है।
तो सर ये तो बड़ा एक मसला है कि देखें, आपने जैसे बोला बिल्कुल सही बोला कि नापैद मर्द डॉक्टर जो है मेल, वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होना शुरू हो जाएंगे और क्या कहते हैं,
हो गए हैं।
तो बाद में 80% जो फीमेल आएंगी वो आ रही हैं, तो वो तो फिर अब घर पे अक्सर जो है वो अब शादी के बाद नहीं, उनको या तो परमिशन नहीं मिलती या सोशल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, तो फिर तो डॉक्टर मौजूद ही नहीं होगा।
नहीं, ये मसला होता है और फिर हमें उसके लिए स्पेशल एफर्ट करने पड़ते हैं। और देखें ना, दूर दराज इलाकों में हम कोई भी नहीं चाहेगा कि खातून
मतलब बिल्कुल ये भी मसला
जाके काम कर सके, तो जाहिर मर्द ज्यादा आसानी से पॉसिबिलिटी है कि वो सस्टेन कर सके, वहाँ रह सके, उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी। इस तरह से फिर कुछ इनोवेटिव आइडियाज आइडेंटिफाई किए गए थे कि जो है वो क्लस्टर्स में तीन जगह एक डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर को दो दो दिन के लिए वो अवेलेबिलिटी उनकी की जाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इन सब चीज़ों को जहन में रख के पॉलिसी बनानी चाहिए।
Obviously.
जो भी फैसला साज लोग हैं उनको ये चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए कि हमें जो है वो क्या कहते हैं आगे जाके कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। और अभी भी हमारा जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि WHO कहता है कि अपनी GDP का कम से कम 6% आप अपनी हेल्थ पे खर्च करें, और हमारे यहाँ उसका अभी तक जो है वो 1.2% से ज़्यादा कभी भी हमने अपनी पूरी तारीख में पैसे नहीं रखे।
अच्छा, ये आम आवाम को समझाने के लिए अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में बोलें तो GDP जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 6% खर्चा, यानी मिसाल के तौर पर अगर 10,000 हमारी मिलियन में है, 5 मिलियन की GDP है, आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त करंटली क्या GDP है, जो भी लेट सपोज के 5 मिलियन है, तो उसका 6% हम अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहे हो हर इंसान के लिए।
जी, तो ये कम अज कम है,
कम अज कम है, ये कम अज कम
ऐसे
है।
बहुत सारे हैं जो 14 से 18%
मुल्क
का जो है GDP का 18% वो अपनी हेल्थ पे खर्च करते हैं,
और हम कम को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और 1.2% के करीब हम चल रहे हैं।
बिल्कुल, और यही वजूहात हैं जो हमने बिल्कुल शुरू में कहा कि कवरेज या एक्सेसिबिलिटी हम नहीं बढ़ा पाए क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, और फिर वो जो पैसे हैं वो उनकी जाहिर है वो इस्तेमाल का और दूसरे मसाइल वो बाद में आते हैं, लेकिन पहले एक आप पाए को बड़ा करेंगे, पहले आप नंबर बढ़ाएंगे, आपके पास पैसा बढ़ेगा तो आप एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे, कवरेज बढ़ाएंगे, जब कवरेज बढ़ेगा लोग अवेलेबल होंगे, उनकी पे स्केल्स आप इतनी बेहतर कर दें कि लोगों को इंसेंटिव हो।
हाँ, ऑब्वियसली गांव में काम करना चाहें फिर वो।
हाँ, और ये एक्चुअली हुकूमत ने ऐसे इंसेंटिव रखे हुए हैं कि आप हार्ड एरियाज में जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए पेमेंट्स मिलती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए।
तो सर, इतने सारे तो डॉक्टर हमारे हर साल पैदा होते हैं
जी,
MBBS मतलब कितने, 150 तो मेडिकल कॉलेज हैं सिंध में ही, तकरीबन अच्छे खासे हैं सबसे ज़्यादा, तो फिर वो डॉक्टर्स जाते कहाँ हैं? ठीक है, शादी हो गया, अक्सर तो लड़कियाँ चली जाती हैं अपने घर शादी से, लेकिन मेल हजरात फिर वो, या तो एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है
जी,
बहुत सारे लोग जो है वो अपना कैरियर चेंज कर लेते हैं,
कैरियर भी चेंज करते हैं, बाहर भी जा रहे हैं, और उसके अलावा क्योंकि देखे ना वो पेइंग उतना अच्छा नहीं रहा, आपका जो फ्यूचरिस्टिक पाथ है वो इतना अगर लुक्रेटिव आपके लिए नहीं होगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, तो आप कोशिश करेंगे कि कोई और काम करें,
बिल्कुल,
या मुल्क छोड़ के कहीं और बाहर जाके करें। देखिये, दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा पेइंग जो फील्ड्स होती हैं वो दो हैं, एक लॉयर है और दूसरा डॉक्टर है। हमारे मुल्क में आप देखें तो डॉक्टर्स के लिए वो लेवल्स ऑफ पेमेंट जो है वो नहीं है, ये जो फिर बाद में बहुत सारी बातें आती हैं कि डॉक्टर्स जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आप उनका पे स्केल्स देख लें और फैसिलिटीज़ देख लें। दुनिया भर में आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्डिक सर्जन है, वो कार्डिक सर्जन अगर किसी एक बड़े शहर में सर्जरी कर रहा है उसको आप 25 लाख रुपए महीना भी देंगे तो वो किसी और छोटी जगह पे जाके काम करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो ही सेम अमाउंट ऑफ मनी वो यहाँ नौकरी करते हुए और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए बआसानी वो कमा सकता है। तो आपको ये पैरिटी जिसको कहें, एक लेवल ऑफ पैरिटी क्रिएट करना पड़ेगा, एक एवरेज जो इनकम किसी एक डॉक्टर की किसी एक खास स्पेशलिटी में हो सकती है, तो वो इंसेंटिव के तौर पे उसको बढ़ा के जब आप देंगे तो फिर वो जाके वहाँ सर्विस करने को तैयार होगा। देखें, आमतौर से डॉक्टर्स के लिए ये मैं वाउच कर सकता हूँ, मुझे तकरीबन 30 साल इस फील्ड में, 30 साल से ज़्यादा हो गए, तो मैं ये देख चुका हूँ कि डॉक्टरों में एक ये जज्बा ज़रूर होता है, स्पेशली यंग डॉक्टर्स में, कि मैं अपने इलाके में जाके सर्व करूँ। वो अपने इलाके में खुशी खुशी जाते हैं। मैं खुद जो है जब मेडिकल ऑफिसर बना था तो शुरू के 3 साल मैंने अपने इलाके में गुजारे, एक छोटी सी RHC थी जिसमें पंखा और लाइट भी नहीं थी, मैंने वहाँ भी जाके काम किया है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे लोग जो है वो अब सेक्रीफाई करने को रेडी नहीं होते, लेकिन उनके लिए इतनी फ्यूचर
सफर सर्विसेज ल्यूक्रेशन और ये सारी चीज़ें
दी जाए, हम इंसेंटिव्स दें ताकि वो ये काम करने को तैयार।
अच्छा, अब फिर आता है कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ठीक है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, मिसाल के तौर पर PMDC
जी,
जब हम देखते हैं तो दो ऐसी आती हैं ऑर्गेनाइजेशन, एक PMDC है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, और एक है सिंध हेल्थ केयर कमीशन। दोनों में फ़र्क आवाम तक हमें पहुंचाना चाहिए कि फ़र्क क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यूरिसडिक्शन, ताकि जहाँ कहाँ कहाँ वो अपने इंटरवीन कर सकते हैं टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम। तो PMDC का क्या रोल है? और
देखिए, PMDC जो है वो बेसिकली रेगुलेट करता है डॉक्टर्स को खुद, यानी कि डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट जो मेडिकल, PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, तो मेडिसिन के और डेंटिस्ट उनको जो एक अथॉरिटी टू प्रैक्टिस दी जाती है, उसके लिए PMDC के पास आपको रजिस्टर होना लाजमी है,
ठीक है,
उसके बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
उनके रजिस्टर्स होते हैं, उसमें एंट्री होती है और डॉक्टर वहाँ पर
रजिस्टर, डॉक्टर जब तक रजिस्टर नहीं होगा तो वो प्रैक्टिस की
काबिल नहीं है,
उसको इजाज़त नहीं। ये सारा काम जो, और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज को रेगुलेट करना,
वो भी पीएमडीसी
के अंदर आ जाता। तो ये सारे काम पीएमडीसी करती है। दूसरा जो पार्ट आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो है हेल्थ केयर कमीशन्स। हर सूबे में अलग अलग बने हुए।
सही है।
पंजाब में सिंध से पहले बन गया था, उसको तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। सिंध में बने हुए भी तकरीबन 6-7 साल अब उसको हो गए हैं। केपीके में भी है, बलोचिस्तान ने भी इस तरफ मेरा ख्याल है बना लिया है, बन गया है। ये इनका काम है रेगुलेट करना हॉस्पिटल्स को,
हेल्थ केयर फैसिलिटीज को
दोनों,
जो प्राइवेट है,
जो प्राइवेट है और जो पब्लिक है।
अच्छा, दोनों को
जी, उनको वो लाइसेंस भी करते हैं, उनको सुपरवाइज भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं।
ठीक है,
ये उनका काम है।
तो उसमें फिर वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ये देखता है कि कितनी कैसी सर्विसेज हैं, विद इन स्टैंडर्ड्स हैं उनके, कुछ स्टैंडर्ड्स
जी बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। इनकी वेबसाइट्स हैं, असल में ये 5 एरियाज को कैटर कर रहे हैं मेनली। अच्छा। एक तो सबसे अहम है लाइसेंसिंग करते हैं, दूसरा ये करते हैं कि जी जो एंटी क्वैकरी है,
अच्छा,
उनको भी इनका पूरा एक अलग से सेक्शन है, डायरेक्ट्रेट है जो सिर्फ एंटी क्वैकरी को देख रहा होता है।
ठीक है।
उसके अलावा कंप्लेंट का भी एक अलग है, और कंप्लेंट में आम आदमी को अगर कोई कंप्लेंट है तो भी वो अप्रोच कर सकता है,
अप्रोच करेगा।
किसी डॉक्टर को किसी इदारे से अगर प्रॉब्लम है वो अप्रोच कर सकता है, और कोई इदारा अगर उसको प्रॉब्लम है किसी से भी, किसी और गवर्नमेंट इदारे से, तो वो भी अप्रोच कर सकता है।
और दैट विल बी डेल्ट राजदारी के साथ।
हाँ, हर बिल्कुल। और आप बगैर नाम दिए ऑनलाइन जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, और बाकायदा फिर उसके बाद उसमें जैसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है।
ओके।
जब वो कंप्लेंट्स को
डील करते हैं,
इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो न सिर्फ ये कि उस इदारे से कॉम्पिटेंट लोग होते हैं और दूसरे इदारों से भी उस खास फील्ड के स्पेशलिस्ट लोगों को भी बुलाया जाता है।
तो क्या ये उनके डोमेन में आता है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, उनको मैनेज करना? ऑब्वियसली एक सर्विस बनी हुई है, RHC बना है या BHU बना हुआ है, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर को देख रहा है, अगर सिंध हेल्थ केयर कमीशन या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, तो वो उस इलाके में BHC में अगर BHU में स्टाफ नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, फलाना ढिमकाना नहीं है सर्विस, तो उसको रेगुलेट क्या फिर वो किसको डील बोलेगा कि भाई गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
वो हेल्थ डिपार्टमेंट को बोलेगा।
अच्छा।
जैसे ही उनके पास एक एप्लीकेशन आती है या वो खुद सुपरवाइज करने जब जाते हैं, देखते हैं कि उसकी सेंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, और जब उसमें कमी है और वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखेगा कि जी ये हम गए थे, उसमें हमने ये देखा है कि ये चीज़ें अभी कम हैं, तो मेहरबानी करके आप ये वहाँ प्रोवाइड करें।
लेकिन इतना बड़ा प्रोविंस हर एक होता है, और उनके पास मुझे ये जहाँ अंदाज़ा तो नहीं है लेकिन ये सुना है कि उनके पास लेस स्टाफिंग है, जो दूर दराज के गांव में भी अगर उनको जाना होगा तो उनके पास स्टाफ की कमी होती है, ऐसा कुछ? ये क्या
हेल्थ केयर कमीशन के
पास? नहीं,
मैं जब इनिशियली एक्चुअली मैं उनके फाउंडर डायरेक्टर्स में से हूँ।
जी जी।
मैं उस वक्त देख रहा था, इसको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का डायरेक्टर था।
ओके।
उस वक्त अब तो मेरा ख्याल उसकी तादाद बढ़ गई हो, उस वक्त जो हमारे पास स्टाफ की तादाद थी वो 154 के करीब थी।
अच्छा।
मतलब जो सेंक्शन स्ट्रेंथ थी।
ठीक है।
और इसके फिर डिविजनल जो है वो क्या कहते हैं ऑफिसेज भी खुलने थे।
अच्छा।
खुल गए हैं।
ठीक है।
और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब फैसिलिटी भी खुलनी है जो डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे देख रही होगी। एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जाम्पल 40 फैसिलिटीज हैं, तो मेरे ख्याल है 40 फैसिलिटीज को अगर 3-4-5 लोग अगर उसको देख रहे हैं तो बसानी उसको देखा जा सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और वो अगर तादाद बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो बढ़ा सकते हैं, इफ़ेक्टिव होना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं।
तो फिर तो बेसिकली अगर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ये इस बात को नोट करके और बता रहा है आगे गवर्नमेंट को, तो फिर ये गवर्नमेंट के एंड पे कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं।
हाँ।
जिसकी वजह से
अवेलेबिलिटी ऑफ HR में HR उस मतलब तादाद उनकी अगर कम हो अभी, बल्कि मैंने रिसेंटली मुझे बताया गया है वो, और बड़ी खुशाइंद बात है गवर्नमेंट के लिए कि इवन जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स दी जा रही हैं गवर्नमेंट को कि कोई चीज़ अगर कम है किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में, दवाएं कम हैं, कोई और चीज़ कम है, तो रोज़ की बुनियाद पे
सिचुएशन रिपोर्ट बना,
हाँ रिपोर्ट बताई जा रही है, और उसके जवाब में डिपार्टमेंट जो है वो DHO को कहता है कि वो चीज़ बताए,
अच्छा ठीक है
पहुँचाए,
ठीक है।
तो एफिशिएंसी किसी हद तक मेरे ख्याल आई है कि सिस्टम्स बेहतर हो रहे हैं, और उसमें फिर पब्लिक हेल्थ का पूरा एक नया कैडर जो है वो पिछले 20 साल से कोशिश की जा रही थी वो बुलाकर बन गया है पिछले 2 साल से
जी,
और अब लोग जो है उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ मैनेजमेंट के उन लोगों को प्लेस किया गया है, तो वो काफ़ी फ़र्क ला रहे हैं।
ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ, अब आते हैं हम पब्लिक हेल्थ की तरफ। पब्लिक हेल्थ आम आवाम को मेरे ख्याल से इस बात का शऊर नहीं है
जी,
जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं जो हमारी मेडिकल की फील्ड में, उनको तो आइडिया है। पब्लिक हेल्थ को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे सादा अल्फाज में कि लोगों तक पहुँच सके।
हाँ, ये बहुत अहम बात है। जैसे मैंने कहा कि जब मैं क्लिनिशियन था खुद, तो मुझे एहसास हुआ कि हम कोई भी बीमारी 100% उसको ट्रीट करना हमारे लिए शायद आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो सारी दुनिया में देखा यह गया कि बीमारी को होने से रोका जाए,
ठीक है, यानी वो जन्म ही ना ले मेरी बीमारी।
और इसका जो टेक्निकली अगर आप देखें तो पब्लिक हेल्थ पे अगर आप $1 खर्च करते हैं तो आपको तकरीबन $18 मेडिकल का एक्सपेंस कम हो जाता है।
अच्छा,
तो प्रिवेंटिव हेल्थ पे अगर आप ₹1,00,000 खर्च कर रहे हैं, असल में आप फ्यूचर में होने वाले 18-17 लाख रुपए हुकूमत को बचा के दे रहे हैं। और आप अभी देखें हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो 100% प्रिवेंटेबल हैं, उनकी जो तादाद है वो इन्फेक्शस डिजीज से भी बढ़ गई है, वो 52% से भी बढ़ गई है।
तो ये तो प्रिवेंटेबल है,
ये सारी प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल है। तो अगर हम प्रिवेंशन पे खर्च करना शुरू करें, और उसमें रोल आ जाता है पब्लिक हेल्थ का कि ये दोनों काम करती है, एक तो हेल्थ मैनेजमेंट को कैटर करती है, दूसरा ये कैटर करती है आपकी डिजीज प्रिवेलेंस प्रिवेंशन को,
सर्वेलेंस हो गई, कैलकुलेशन हो गई,
मॉनिटरिंग हो गई, सर्वेलेंस हो गई, अर्ली डिजीज वार्निंग हो गई, ये सारे काम पब्लिक हेल्थ के डोमेन में आते हैं। तो जब आप लोगों को इस हद तक समझा देंगे कि ये चीज़ मेरे लिए करना है नुकसानदेह है, वो जो हम हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, हमारे पास इस वक्त जो है वो हेपेटाइटिस एक वबा की तरह से फैला हुआ है, हमारे पास 26% जो है वो डायबिटीज़ हो गई है, हमारे पास हर दूसरा शख्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से जैसे ही वो एज होने लगा है तो उसमें हाइपरटेंशन आ गई है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है, 100% प्रिवेंटेबल है।
सर, तो इसमें एक सवाल बनता है बहुत अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स से जिक्र करता हूँ हेल्थ प्रमोशन में, कि अब लेट सपोज कि मैं एक मरीज हूँ ब्लड प्रेशर का, और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो ये बता रहा है कि पिछली हिस्ट्री से कि तुम्हें हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, भाई अब नमक कम खाया करो, चिकनाई कम, वॉक किया करो, फलाना ढिमकाना, और ये मैं निकला वॉक करने के लिए, मेरा मोबाइल छिन गया, आगे थोड़ा सा आगे गया किसी ने सर पे पत्थर मार दिया, तो वो जो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है ना माशरे में जिसमें मैं हेल्थ एजुकेशन को प्रैक्टिस कर सकूं, वो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो मैं फिर फल खाने जाऊं तो फल मेरे पास वो कैंसर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और इनऑर्गेनिक हैं सब्ज़ियाँ, वो सारी आटा मिक्स हुआ हुआ, मसाले मेरे सारे मिक्स, तो मैं फिर तो इस तरह कैसे चलेगा? मतलब
देखें, ये सारे उन मसाइल की आप बात कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमें हुकूमती सतह पे और इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे सिस्टम्स, फिर वही ये बार बार आपको मैं लफ्ज़ जो सिस्टम की बात करता हूँ, हमें ऐसे चेक्स ऐसे तरीक़ेकार इन प्लेस करने होंगे जो इस बात का, जो हमारी फूड अथॉरिटी है उसको हमें वाइब्रेंट करना पड़ेगा, वो बनी हुई है, लॉज बने हुए हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे। तो पब्लिक प्रेशर जो है वो सबसे बड़ा टूल होता है दुनिया भर में, या तो जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कम्युनिटी में, तो पब्लिक हेल्थ के लिए भी प्रेशर ग्रुप्स होने चाहिए, और हम खुद जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं उनको इस बात को और ज्यादा प्रोपगेट करना पड़ेगा, और हम उनसे सवालात पूछें क्यों नहीं, मतलब आजकल हमारे पास सोशल मीडिया हर आदमी के पास है, हम ईमेल कर सकते हैं, हम उनको कॉल्स कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं। देखें, मैं एक एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि एक जो है कोई भी डिपार्टमेंट है किसी एक बड़े अस्पताल में वो काम नहीं कर रहा, रेडियोलॉजी की मशीन खराब है, तो अगर सुबह से लेकर शाम तक वहाँ 10-12 हज़ार लोग जो है वो हमारे बड़े अस्पतालों में विजिट करते हैं, ओपीडी है उनकी। तो उस ओपीडी में से अगर हर दिन 20-25-50 लोग एमएस के पास जाकर इस बात की शिकायत करें कि मुझे ये सर्विस आपके यहाँ नहीं मिली, आप मुझे बताइए वो कितने दिनों तक उसको ठीक कराए बगैर रहेगा।
हाँ, मसला एक ये भी है कि हमारे यहाँ आवाम जो है ना एडजस्ट हो जाती है, अच्छा नहीं है ठीक है चलो कहीं और कर लेंगे, अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। हम उस चीज को सीधा करने में भी तो एफर्ट मारे।
हम सरकारी अस्पतालों को कहते हैं खैराती अस्पताल, यहीं से खराबी शुरू हो गई।
अच्छा ठीक,
ये कहीं से भी खैराती अस्पताल नहीं है, ये आपके अपने टैक्सेस से जो अब मैंने और आपने दिए हैं उन्हीं से ये अस्पताल चल रहे हैं, और दे आर सपोज टू प्रोवाइड अस विद द सर्विसेज। अगर वो आपको सर्विसेज नहीं दे रहा तो आप उन तक पहुंचे और उनसे कहें कि ये सर्विसेज हमें क्यों नहीं मिल रही।
और यही तो एक सिस्टम है जो कि प्रिवेल होना चाहिए पूरे कंट्री में,
सारी दुनिया में ऐसे होता है।
उसको सपोर्ट करने के लिए भी प्राइवेट मेरे ख्याल से हॉस्पिटल है कि जहां फिल्टर हो सके।
हाँ देखें, ऐसा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ, उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक जो चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं,
सही है,
वो भी एक बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ प्ले कर रहे हैं, और उसके अलावा फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्योर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्योर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमेशा दुनिया भर में ज़ाहिर है महंगे होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि वो आपको आपकी मर्जी के वक्त पे आपकी मर्जी की लेवल और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो यकीनन वो चार्ज करेंगे आपको।
ठीक है,
जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग वहाँ चले जाएंगे, तो उससे एक तो रश जो है वो ज़ाहिर है डाइवर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है,
जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें उन लोगों को अच्छी सर्विसेज मिल सकेंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते।
ठीक है,
तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का होना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ वो भी रेगुलेटेड होने चाहिए, और ये फिर अगेन हेल्थ केयर कमीशन का रोल आ जाता है, वो भी लाइसेंस उनको करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं और उनकी सर्विसेज को देखते हैं कि वो उस लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं जितना वो चार्ज कर रहे हैं, क्या वैल्यू फॉर मनी मरीज को मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो वो कंप्लेन कर सकता है, ऑनलाइन कंप्लेन करे। ठीक है, और दूसरी सूरत में ये भी है, जहाँ तक मुझे याद है जो रेगुलेशंस बनी हुई हैं उनमें ये अथॉरिटी दी गई है हेल्थ सारे कमीशन्स को कि वो रेंज ऑफ सर्विसेज उस लेवल के हिसाब से उसकी कीमत को भी मुकर्रर कर सकते हैं।
अच्छा, यानी कि अगर एक एक्सरे की कीमत प्राइवेट अस्पताल में 200 रुपये है
जी,
तो कोई अस्पताल 400 रुपये भी मांग रहा है, 25,000 रुपये भी मांग रहा है, 25,000 तो ज़्यादा हो गया लेकिन 5,000-2,000 मांग रहा है।
नहीं बिल्कुल, वो देखें उनको ग्रेडिंग कर देनी चाहिए, इस तरह से ग्रेडिंग की जा सकती है कि जो यानी कि एक खास लेवल तक लोग हैं वो इस रेंज तक पैसे ले सकते हैं, खास लेवल तक हैं वो इस रेंज तक पैसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल मौजूद है, कोविड के ज़माने में सरकार ने जो है वो जो टेस्टिंग हो रही थी, पीसीआर हो रहा था, उसकी एक मैक्सिमम जो है वो कीमत मुकर्रर कर दी थी, वो उसी लॉ के तहत की गई थी और वो अब भी की जा सकती है, और ताकि फिर आपको पता हो आप ऑनलाइन जाके देख लें कि मैं जिस अस्पताल में जा रहा हूँ यहाँ इस सर्विस की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत इतनी होनी चाहिए।
ओके,
अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर अगेन हम यहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं और उनसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं, उनको ख़त लिख सकते हैं, और फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में लोग, वो तो क्लाइंट और उसका रब्ता होता है ना, एक क्लाइंट आप उनके क्लाइंट हैं,
हम क्लाइंट
हैं, क्लाइंट जो है जब तक सेटिस्फाई नहीं है और अगर उसकी कीमत उसको ज़्यादा लग रही है तो कंप्लेन कर सकता है, वहाँ जाना बंद कर सकता है, दूसरी अल्टरनेट ढूंढ सकता है।
तो सर ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन, ये क्या गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है या एक सेमी प्राइवेट, क्या है?
नहीं नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट का इदारा है, 100% गवर्नमेंट का फंडेड है और बाय लॉ है, इसका बाकायदा ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये बनाया इदारा, ऑटोनोमस बॉडी है।
ठीक है,
और ये हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ऑगमेंटिंग, लेकिन उसके अंडर नहीं आता।
ठीक है,
लेकिन उसके जरिए ही काम करता है, तो जहां इसको प्रॉब्लम्स होती हैं ये डायरेक्टली हेल्थ डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है, और जैसे मैंने कहा कि एंटी क्वैकरी में बाकायदा जो पुलिस है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एक पूरी मैकेनिज्म मौजूद है कि उसको कैसे जाके बंद करना है और कब खुलवाया जा सकता।
तो हमने तो सर ये भी देखा है कि आज ये बंद करके जाते हैं तो 2 हफ्ते बाद 3 दिन बाद दोबारा से खुल जाता है, फिर इनके पास स्टाफ की कमी होती है।
नहीं, वो अब ये प्रोजेक्ट इस तरह कर रहे हैं, उसूलन देखें अगर आपका बंद हुआ तो आप
सील लग गया ना, सील
हाँ,
लग चुका
सील लग गया, और वो सील तोड़ना
क्राइम है,
क्राइम है, और इवन उसकी जो उसके ऊपर जो जुर्माना है वो यानी कि आपकी प्रॉपर्टी से लिया जा सकता है बाय द लॉ, यानी कि उसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो लेवल है उस हद तक आपके पास पावर है,
ठीक है।
इसके अलावा एक और जो एडिशनल पावर आपको मिला हुआ है वो ये है कि इवन कोर्ट्स में जब आप जाके केसेस करते हैं तो इवन हाई कोर्ट भी आपका केस जो है वो पहले हेल्थ केयर कमीशन में रेफर करेगी, हेल्थ केयर कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देगी, उस पे जाके वो डिसीजन लेंगे।
अच्छा ठीक है, तो सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस
सारे वो काम जो है वो हेल्थ केयर कमीशन
देगा। तो सर इवन एट दिस लेवल इतने छोटे पैमाने पे एक छोटा क्लिनिक है कहीं कोर्ट में कहीं दूर फलानी जगह किधर, तो वो खोल लेते हैं सील होने के बाद और फिर वो खुला रहता है, फिर कुछ अरसे बाद फिर विजिट होता है फिर होता है, तो ये जो बड़े अस्पताल हैं तो वो उनके ऊपर इनकी रेगुलेशंस चल सकती हैं। हम तो ये देखते हैं ना, हम जैसे पाकिस्तान का सिस्टम है कि जी बड़े आदमी को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो बड़े अस्पताल जो हैं क्या उन पर रेगुलेशंस ये इम्पोज कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, इनको हर तरह के पावर्स हैं।
अच्छा,
प्रैक्टिकली ये कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये तो फिर उनकी इफिशंसी पे आ जाता है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी बात है। अब अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं तो लोगों को तो कम से कम पता होना चाहिए, वो तो इस बात को कह सकते हैं ना। अगर किसी लेवल पे जो कमीशन है वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहा तो वो तो आम आवाम उसको हाईलाइट कर सकती है, लॉ में बिल्कुल क्लियर है,
ठीक है।
सारे पावर्स जो है इनके पास मौजूद हैं, आप देखें जो ला पंजाब का जो हेल्थ केयर कमीशन है वो इंतहाई इफेक्टिव है, और इवन जो गवर्नमेंट है वो भी जो काम कर रही होती है वो हमेशा शामिल रखती है या हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है,
ठीक है।
तो एज फार एज लॉ इज कंसर्न उसमें सारे पावर्स हैं।
तो फिर ये होता है कि बहुत सारे जो हैं वो नहीं भी चल पाते कि क्या सारे अस्पताल जो हैं वो, अच्छा सवाल फिर यहाँ से निकलता है कि क्या ये जो अस्पताल इनसे एक्सेप्टेबल हुआ इनकी रेगुलेशंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंडर काम कर रहा है तो क्या वो कोई सर्टिफिकेट लगाते हैं, चस्पा करते हैं कि ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव शुदा?
बिल्कुल, इसमें तीन स्टेजेस हैं। इनिशियल होती है कि आपको रजिस्टर कराना है, इसके बनने से पहले तो हमारे पास आपको एक पान का खोखा खोलने के लिए तो लाइसेंस लेना पड़ता था, हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता था।
ओके,
ये तो मतलब सबसे बड़ा फ्लॉ ये था, उसको ओवरकम करने के लिए ये बनाया गया इदारा कि आप लाइसेंस तो लें ना, आप लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे संभाव, तो उनको अगर बगैर किसी लाइसेंस के, तो उसमें हुआ ये था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए थे, उनका हॉस्पिटल मतलब मेडिकल से कोई लेना देना ही नहीं था, तो अब जो है कम से कम वो पहले रेगुलेट होते हैं, फिर वो प्रोविजनल लाइसेंस लेते हैं, फिर उनको सपोर्टिव मॉनिटरिंग दी जाती है कि कहाँ कहाँ ऐसे आपके पास मसले हैं जिनको आपने ठीक करना है,
ठीक है।
फिर जब वो बिल्कुल उस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर उनको 3 साल के लिए एक फुल फ्लेज लाइसेंस मिल जाता है जो फिर हर 3 साल बाद उनको रिन्यू कराना होता है।
तो इसका मतलब तो ये है कि आवाम को ये चाहिए कि वो ये देखें कि मैं जिस अस्पताल में जा रहा हूँ वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव है या नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल,
प्राइवेट क्लिनिक जा रहा हूँ वो अप्रूव है या नहीं है,
100%।
और अगर नहीं है तो ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन को बताना चाहिए, इन आवाम को बताना चाहिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन।
बिल्कुल, और आप खुद भी उनको क्वेश्चन करेंगे तो वो सोचने लगेंगे कि हाँ यार इसका मतलब ये कि हमें तो होना चाहिए, तो लोग पूछ रहे हैं, हमारे क्लाइंट पूछ रहे हैं।
वह मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारी आवाम एडजस्ट हो जाती है कि कोई बात नहीं अब इलाज करना है, मेरा क्या ताल्लुक है सिंध हेल्थ केयर कमीशन से। बेसिकली उनको सर्विसेज वो क्वालिटी की मिलेंगी अगर वो सवाल जवाब करना शुरू करेंगे।
एग्जैक्टली
तो।
देखें बात यहीं से शुरू होती है कि सबसे पहला सवाल मुझे ये पूछना होता है कि हम जैसे हुकूमत से सवाल पूछते हैं कि जी हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, ठीक है, हम तो टैक्स तो भर रहे हैं, बिल्कुल वैलिड सवाल
है।
सिमिलरली आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको अगर 500,000 रुपए आप फी भर रहे हैं तो फी भरते हुए आपका हक है कि आप उससे पूछें कि आपके पास पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन मौजूद है, वो लगा के रखते हैं, लगी होती है, पूछें आप कि जी आप हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस रहे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको एक स्टैंडर्ड दे देता है कि ये जरूर उस प्रोसेस से गुजरा है जिसके तहत ये इतना अच्छा होगा कि मैं इसकी सर्विसेज ले सकता
हूं, इससे इलाज करवा सकूं।
देखिए इलाज सबसे ज्यादा अहम तरीन बात मेरे लिए ये होनी चाहिए, जैसे हम दवाएं लेते हुए हमेशा
डेट देखते हैं,
पूछते हैं कि एक्सपायर्ड तो नहीं है और डोज जो है वो हमें प्रॉपर क्या लिख के दिया गया है, तो इसी तरह हम डॉक्टर को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, करना चाहिए।
तो आपके ख्याल में क्या हमारे हेल्थ सिस्टम में ओवरऑल बेहतरी आ रही है या बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनको ऑब्वियसली ओवरकम करने की स्लोली एंड ग्रेजुअली तो जरूरत पड़ती रहती है सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो कौन से ऐसे मराहिल हैं, अवामिल हैं जिनको हम आप समझते हैं कि वो एक रेड जोन में इस वक्त हैं हम, या वो कौन से अवामिल हैं जो रेड जोन को नॉमिनेट कर रहे हैं कि भाई इस वक्त ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये पहले कर लो, तो वो कौन से आप सजेस्ट करना चाहेंगे?
देखें, अगर हम इसको इस तरह से लेके चलें कि सबसे जो अहम तरीन बात है, कम अज़ कम मेरी नज़र में, वो ये है कि जो हमारे 80% सर्विसेज देने वाले जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हों, वो हेल्थ रेगुलेशन में उनको भी लाइसेंस होना है। तो ये हेल्थ सिस्टम का हिस्सा और रेफरल, जो भी जनरल प्रैक्टिशनर किसी कंसल्टेंट के पास या किसी अस्पताल में अपने किसी मरीज को रेफर कर रहा है, तो वो रेफरल सिस्टम अपनी जगह मौजूद होना चाहिए। वहाँ से जो भी डॉक्टर उस स्पेशलिस्ट या अस्पताल जो देख ले, वो फिर उस जनरल प्रैक्टिशनर के पास फॉलोअप के लिए उसको भेजे।
अच्छा, ठीक,
कहीं ये एक लिखे हुए फॉर्म में ये काम होना चाहिए
और ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड हो और सिस्टम में होती है,
और ताकि आपको जो उसमें जो सबसे अहम बात होगी ये काम करने से, वो ये होगी, जो कि मेरा ख्याल है कोई इनिशिएटिव इस तरह का आ भी रहा है, अभी कल परसों ही मेरा ख्याल है हाईलाइट हुआ है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने, नेशनल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की है कि जो CNIC है आपका, ये आपका MR नंबर बन जाएगा
हेल्थ सिस्टम में,
हेल्थ सिस्टम में।
अच्छा,
तो मेडिकल रिकॉर्ड्स MR नंबर से मुड़ा, तो अगर वो मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ उस लेवल पे बनना शुरू हो रहा है तो उसमें ये एडिशन होना चाहिए कि जो GP हो उसके पास भी वही नंबर इस्तेमाल होना चाहिए।
ठीक है,
और वो फिर डेटा हमें प्रोवाइड करे, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फिर DHIS2 है, वो सरकारी तौर पे तो काम कर रहा है लेकिन जो गैर सरकारी डेटा है उसको कैप्चर नहीं कर रहा।
ठीक है,
बाद में जब हम AI की तरफ अब दुनिया जा रही है, मुस्तकबिल में जो हमें सबसे ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ेगी वो यही डेटा इंटीग्रेट होना लाजमी है। फिर अगर हम आ जाएं कि जी प्राइवेट सेक्टर की जैसे हमने बात की, तो उनको भी रेगुलेट होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम जिस अस्पताल में जा रहे हैं वो हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज हमारी सेटिस्फेक्शन की लेवल तक हैं या नहीं है। फिर अगर हम आ जाएं अपने पब्लिक सेक्टर की तरफ, तो गवर्नमेंट में डेफिनेटली चीज़ें बेहतरी की तरफ जा तो रही, ये नहीं कह सकते कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लेकिन उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। आप जो हम जो ये कह रहे हैं कि जी बड़े अस्पताल हैं उनमें से 10,000 और 11,000 की हमारी OPD पर डे है, तो वो इतनी टर्शियरी केयर में नहीं होनी चाहिए। ये जाहिर करता है कि हमारा जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है वो काम नहीं कर पा रहा, तो आदमी को छोटे से काम के लिए भी
अस्पताल की तरफ जाना,
बड़ी अस्पताल में जाना पड़ता है। अगर GP प्रॉपरली काम कर रहा हो, BHU हमारा प्रॉपरली काम कर रहा हो, तो टर्शियरी केयर पे तो सिर्फ स्पेशलाइज्ड केयर, ऑपरेशन होने वाले जो सीरियस केसेस हैं जिनको बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि नगरदाश्त की जरूरत है, ICU में जाने की
ट्रीटमेंट होनी,
सिर्फ उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। दुनिया में आप देखें जो डेवलप्ड सिस्टम है उनमें टर्शरी केयर में तो आपको
OPDs मिलेंगी नहीं,
एग्जैक्टली पेशेंट नजर ही नहीं आता, सिर्फ रेफरल्स आते हैं।
ठीक है,
कि मिडिल लेवल से या जो सेकेंडरी लेवल है या BHU है, वहां से एक मरीज रेफर होगा, वही टर्शरी केयर पे जाएगा, वरना उसको टर्शरी केयर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो हमारे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखें सबसे ज़्यादा रश ही OPD में होता है, और वही मतलब एंटर हो तो आप OPD पूरा सिस्टम,
और वही आपके सिस्टम को कलेप्स कर रहा है,
वही कोलेप्स कर
कि रहा है आपका सारे जो जैसे कहते हैं कि रिसोर्सेज और वक्त जो है वो OPDs में ज़ाया हो रहा है, वहां से जो फिल्टर होने चाहिए, फिल्टर होके आने चाहिए, वो काम भी आपको खुद करना पड़ रहा है।
तो यही OPDs अगर हम इलाकों में बना दें तो डिस्पर्स,
एग्जैक्टली,
तो वहां से पेशेंट आए ही ना
रेफर होके आएगा,
उसको अपने घर के पास ही इलाज मिल जाएगा,
इलाज उसको करीब मिल जाए, वॉकिंग डिस्टेंस हो, ज्यादा करीब हो के 10 मिनट से 20 मिनट में वो पहुंच जाए। और इसी तरह से आपकी जो इमरजेंसीज हैं, एक पूरा ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं या जो इमरजेंसी सेंटर्स हैं वो हर
डिस्ट्रिक्ट में
होना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर्स बने थे 30 डिस्ट्रिक्ट्स में, ट्रॉमा सेंटर्स बने लेकिन वो फंक्शनल नहीं किए गए और उनमें मसाइल हैं, लेकिन एज अ सिस्टम वो अपनी जगह मौजूद है।
ओके, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें
जो बेहतर होने वाली
बहुत ज़रूरी हैं,
जो बेहतर,
ऑब्वियसली OPDs की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, और OPDs से ही मेजर चंक ऑफ डेटा हमारा आ सकता है, जिसको यूज करते हो हम प्रिवेंशन के लिए, पब्लिक हेल्थ वाले
फैसला कर सकते हैं कि हमें किस तरफ जो है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम अपने कोर्स के जमाने में एक जो है वो क्या कहते हैं हमसे डिस्कस किया गया था ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में, उन्होंने देखा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें न्यूट्रिशन के बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोई न्यूट्रिशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो उन्होंने एक सर्वे किया, तो सर्वे करने पे पता ये चला कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको करीब कोई स्टोर नहीं है,
मेडिकल स्टोर नहीं है,
नहीं नहीं कोई प्रोविजनल स्टोर, मतलब चीज़ें मिल आसानी से नहीं मिलती उनको, तो उनको एक बस में चढ़ के जाना पड़ता है। उन्होंने तो बस में चढ़ के जाने से अवॉइड करने के लिए जो घर में जो चीज़ें मौजूद थी, फ्रिज में जो चीज़ होती है वो खा ली, ब्रेड मौजूद है, जैम मौजूद है, ऊपर लगा के खा लिया,
ठीक है,
तो उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही थी।
ठीक है,
उन्होंने वहाँ एक प्रोविजन स्टोर खोल दिया, उनको हेल्थ न्यूट्रिशन का कोई प्रोजेक्ट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ उसकी प्रोविजन यानी कि अवेलेबिलिटी उन्होंने सामान की बढ़ा दी, ना उनको पैसों का मसला था ना उनको कोई और मसला था। तो इस तरह आपका पूरा न्यूट्रिशन का प्रोग्राम जो आपको बनाना पड़ता उस पर खर्च करना पड़ता और असल वजह फिर भी बाकी रहती।
इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं कि जिसमें हम डेटा और मतलब हम हालात का जायजा लेके
अपने असल मसला कहाँ,
हाँ असल मसला कहाँ, इंटरवेंशन प्रोवाइड कर दें तो बेहतरी आ सकती है।
बिल्कुल, अगर सिर्फ अवेयरनेस से आपका काम हो सकता है तो आपको उसके लिए पूरा जो है वो स्टाफ हायर करने की जरूरत नहीं है और पूरा जो है वो क्या कहते हैं सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है।
तो सर आप इसको अगर हम आज की डिस्कशन को समअप करें तो क्या आप मेजर पॉइंट्स कहना चाहेंगे आखिरी इख्तितामी कलमात, क्योंकि हमारा टाइम भी मसला है कि लिमिटेड है, तो कोई ख़ास मैसेज या कोई ऐसी?
देखिए दो चीज़ें हैं, कुछ काम हैं जो हमें एज ए इंडिविजुअल करने के हैं, वो ये हैं कि हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छी सेहत किसको कहते हैं, जिसमें मेंटल फिज़िकल और सोशल हेल्थ जो है वो हमारी ठीक होनी चाहिए।
ठीक है,
फिर अब सरकार पे अगर हम चले जाएं तो सरकार को अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है, फंडिंग जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कुछ इलाकों में कुछ सूबों में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया और उसको हमें इन्हेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज पे अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास हमेशा फंडिंग की कमी रहती है।
ठीक है,
और उसको ओवरकम करने के लिए एक किसी ना किसी हद तक हेल्थ इंश्योरेंस को हमें लाना पड़ेगा, और वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए और गवर्नमेंट के लेवल पे भी जाना चाहिए।
अच्छा ठीक है, इस पे हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हेल्थ इंश्योरेंस का।
जी बिल्कुल,
इस पे हम अगला इंशाल्लाह बैठक और अगली निशस्त करते हैं इंशाल्लाह अनकरी आपकी अवेलेबिलिटी पे।
जरूर,
तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुलेमान छोटो साहब आपके आने का, हम बहुत मशहूर और ममनून हैं, और इस टाइम कनेक्ट के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन दीज आर ये जो जितनी बातें हैं दीज इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर सुलेमान ओठो ने हमें बताई, ये शायद आपको बहुत सारी बातें एक आम आवाम को ना पता हों, तो जो डिस्कशन हुई उसमें हमें जो टेक अवे मैसेजेस मिले हैं वो ये है कि एक तो ये कि आवाम को भी चाहिए कि सवाल जवाब करें जब कहीं अस्पताल या किसी जगह जा रहे हों, ताकि उनको सर्विसेज क्वालिटी की मिलें बेस्ड ऑन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। अगर कोई डॉक्टर रजिस्टर नहीं है तो वो डॉक्टर रजिस्टर क्यों नहीं है वो पूछा जाए, तो उस चीज़ का सवाल करना चाहिए। हम सवाल नहीं करते और हम सिर्फ एडजस्ट और चीज़ों को मैनेज करने में लग जाते हैं कि चलो दूसरी जगह चले जाएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और। इसी तरह किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो अस्पताल है वहाँ पे जाके भी अगर आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही या कोई सर्विस नहीं मिल रही, तो आप वहाँ के MS से या कहीं और जो जो उनकी गवर्निंग एजेंसी है या जो उनकी हायर अप्स हैं उनसे आप बात करके इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं कि ये सर्विस क्यों नहीं है। तो जितने ज़्यादा लोग जाएंगे जैसे डॉक्टर सुलेमान ओठो ने बताया, उतना ज़्यादा इस बात को एक पॉइंट ऑफ केयर मिलेगा और लोग जो है वो बेहतरी की तरफ, इसी तरह सिस्टम बेहतर होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और इन बातों को रिपीट करने से तो फ़ायदा नहीं, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी और देखी और जाँची। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अनकरीब डॉक्टर सुलेमान ओठो को फिर हम मधु करेंगे अपने पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया, दिस इज़ स्टेम कनेक्ट एंड यू आर वॉचिंग स्टेम कनेक्ट। डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी साइनिंग ऑफ, थैंक यू।
This is the end of the current blog post of STEM Talk by STEM Connect Private Limited. Thanks for tuning in to this episode. We'd love to hear your thoughts. Drop your feedback in the comments below. If you enjoyed this conversation, don't forget to subscribe to our YouTube channel for more inspiring discussions, expert insights, and powerful ideas shaping the future of science, technology, education, and innovation. Stay curious, stay connected.